देवियों सज्जनों, आज पितृ दिवस है, फादर्स डे। हमारे यहाँ तैतरीय उपनिषद में वाक्य आता है पितृदेवो भव, मीन्स पिता को देवता समान मानो, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। अपनी माँ को, अपने पापा को, अपने टीचर्स को, और समाज में काम करने वाले वो लोग जो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं वो अतिथि हैं, उन सबको देवता के समान मानो, उनको देवताओं की तरह ट्रीट करो। पिछले महीने हमने मातृ दिवस मनाया था, मदर्स डे, इस बार फादर्स डे है। वैसे दोनों को अलग अलग देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग नहीं चलते हैं। केवल पापा हो या केवल माँ हो तो बच्चों की परवरिश नहीं होती है। दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, दोनों का जो साथ है, बच्चों को दोनों का साथ चाहिए। तो इसीलिए जब हम एक दूसरे एक की के बारे में डिस्कस करते हैं तो आप दूसरे को उसे हटाकर नहीं देख सकते। जब आप अपने पिता की प्रशंसा करते हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि माँ को उसमें हटा के प्रशंसा कर सके पाएंगे, या जब आप माँ की प्रशंसा करते हैं ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसमें पिता को हटा दें। बीच बीच में दोनों की चर्चा आनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों के साथ ही संसार बनता है। हमारे यहाँ शतपथ ब्राह्मण में एक छोटा सा वाक्य है, कितने वो व्यक्ति बड़ा फॉर्चुनेट है, बड़ा प्रिविलेज्ड है जिसके पास तीनों है, मातृमान, पितृमान, आचार्यवान, पुरुषो वेद। उस व्यक्ति को व्यक्ति समझना, वो इंसान को इंसान समझना जिसके पास तीन चीजें हो, जिसको माँ के साथ रहने को मौका मिला, जिसको पिता के साथ रहने को मौका मिला, जिसको अपने टीचर्स के साथ रहने को मौका मिला। जो तीनों का संग प्राप्त करता है वो व्यक्ति सचमुच इंसान बन जाता है। माँ के पेट से जो पैदा होता है वो तो पशु की तरह हम होते हैं। हमारा जो व्यवहार होता है माँ के पेट से जन्म होने के बाद वो बिल्कुल जानवरों की तरह होता है। ना हमारे पास कुछ समझ होता है, ना अकल होता है, ना कुछ बुद्धि होती है, ना शरीर साथ देता है, ना बुद्धि साथ देती है। धीरे धीरे हम जो कुछ भी बनते हैं, हम जिंदगी में जो कुछ बने हैं वो माँ के कारण, पिता के कारण और उन टीचरों के कारण। तो इसीलिए इन तीनों का साथ जिनको मिला जीवन में वो सचमुच वो धन्य होते हैं। महाभारत में एक प्रसंग आता है, जब यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद में, अरण्यकांड में, कि जमीन से, धरती से ज्यादा भारी कौन है और आकाश से भी ज्यादा ऊंचा कौन है, किम स्वित गुरुतरा भूमि है, किम स्वित उच्चतरम च खात। खा कहते हैं आकाश को, आकाश से भी ऊंचा कौन है और धरती से भी भारी कौन है। धरती से भारी का मतलब धरती हर तरह के बोझ को सहती है, हर तरह के दर्द को सहती है। आप उसको कितने तरह के उसमें नाचे कूदे, कुछ भी तरह के हरकतें करें, धरती कभी शिकायत नहीं करती है। हर तरह के सुख को दुख को वो सह जाती है और अपने ऊपर रहने वाले लोगों को रहने देती है। और वो लोग, इंसान हो, पशु हो, पक्षी हो, जानवर हो, या पेड़ पौधे हो, उनमें कोई वो डिफरेंशिएशन नहीं करता, कोई भेद नहीं करता। ये धरती का गुण है, ये माँ का, धरती माँ का गुण होता है। तो पर उससे भी ज्यादा बड़ी कौन है, तो जो यक्ष युधिष्ठिर से पूछता है तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, माता गुरुतरा भूमि है, अगर जमीन से भी धरती से भी कोई ज्यादा भारी है, कोई ज्यादा सहन शक्ति वाली है, कोई ज्यादा सहती है, वो माँ है। और आकाश से भी ऊंचा कौन है, ये फर्क समझने की जरूरी है। ये नहीं कहा कि पिता जो है वो धरती से भी ज्यादा सहिष्णु हो नहीं सकता, कोई पिता माँ की तरह इतना सहनशील नहीं है जितना माँ सहती है, पर इसका अर्थ नहीं कि उसका जो भूमिका है, उसका जो रोल है लाइफ में वो कुछ कम है। वो आकाश से भी ऊंचा है, आकाश छत देता है, आकाश प्रकाश देता है, आकाश बादल देता है, आकाश बारिश देता है, जो कुछ हमारे जीवन में हम अचीव करते हैं, जो कुछ आसपास हमें मिलता है, वो आकाश के कारण मिलता है, और वो आकाश से भी ऊंचा कोई जीवन में है वो पिता है। ऊंचा किस लिए या भारी किस लिए? क्योंकि धरती और आकाश दोनों जड़ हैं, मैटर है, उनमें कोई सेंस नहीं होता। आप उन पे कूदते हैं तो सचमुच उनको कोई दर्द नहीं होता, वो तो हम दर्द की एक कल्पना करते हैं। पर जो मां के साथ जो बच्चे करते हैं पैदा होने से लेकर बड़े होने तक, उसको दर्द भी होता है, उसका भी शरीर है मन है, पर वो उसको झेलती है। पिता जीवित है, प्राणी है, वो आकाश के तरह जड़ नहीं है कि सब कुछ नेचुरली सब कुछ मिल जाता है। पिता जब बच्चों को देता है वही पानी, वही खाना पीना, जो कुछ भी उसकी परवरिश, वो अपने आप को सरेंडर करके, अपने आप के साथ कंप्रोमाइज करके करता है। इसीलिए पिता आकाश से भी ऊंचा और माँ आकाश धरती से भी भारी होती है। वैसे दोनों को हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि अपने जीवन में सबका रोल होता है। माँ का अपना रोल है, पिता का अपना रोल है। जब दोनों शादी करते हैं पति पत्नी, तो उस समय एक दूसरे को विवाह संस्कार में एक मंत्र आता है कि मैं सूर्य हूं, तुम चांद हो, मैं धरती, तुम धरती हो, मैं आकाश हूं, तुम ऋग्वेद हो, मैं सामवेद हूं। ये जो प्रसंग है विवाह संस्कार में, ये आगे के लिए ये जमीन तैयार करता है कि दोनों चांद बन के घर नहीं पाल सकते। चांद बड़ा ठंडा होता है, शीतल होता है, रात को बड़ा सुकून देता है। सूरज बहुत गर्मी वाला होता है, बहुत चुभता है, आजकल जैसे आपको बड़ा चुभता है, पर आप सूरज के बिना केवल चांद में जी नहीं सकते। आपको सूरज भी चाहिए, धूप भी चाहिए, और क्योंकि आपको प्रकाश चाहिए तो उस सूरज का जो तीखापन है उसको भी सहना पड़ता है। इसी तरह मां बाप में से किसी एक को सूरज बनना होता है, किसी को चांद बनना होता है, किसी को सॉफ्ट होना होता है, किसी को हार्ड होना होता है। कोई ज्यादा बोरियत वाला होता है, बड़ा सारा लेक्चर डालने वाला होता है, मां या बाप में से कोई ना कोई ज्यादा लेक्चर झाड़ता ही होगा, झाड़ती होगी। किसी ना किसी को तो लेक्चर देना पड़ेगा। और दूसरे यो सामवेद है, जो बड़ा पोलाइट होगा, कम बोलेगा या बोलेगी, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, आगे से नहीं करना, एक गलती पर कभी कोई ना कोई तो आधा घंटा तक लेक्चर झाड़ेगा या झाड़ेगी। जो दूसरा होगा वो कहेगा कोई बात नहीं बेटे सुन लो, माँ थोड़ा ज्यादा बोलती है या पापा थोड़ा ज्यादा बोलते हैं, कोई बात नहीं सुन ले, पर ऐसा मत किया करो। ये सामवेद है। ऋग्वेद ज्यादा ज्ञान की बातें झाड़ता है, पर दोनों की जरूरत है। जो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो बच्चे ठीक से परवरिश होता है। एक गुस्से में होता है तो एक शांत में होता है, दोनों गुस्से में होंगे तो बच्चा कहां जाएगा। एक सूरज होता है तो एक चांद होता है। तो यहीं पर जो विवाह संस्कार में ही छुपा होता है, पति पत्नी का जो रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप एक डेढ़ साल के बाद फिर माँ बाप के रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाता है। तब बच्चे सेंटर पॉइंट में होते हैं, और पूरी जिंदगी माँ बाप की उस बच्चों के इर्द गिर्द घूमता हुआ, फिर वो बूढ़े हो जाते हैं, फिर पता ही नहीं चलता है कि उनकी अपनी जवानी कब गई, उनके अपना जीवन कब गया। उन्हीं में से कुछ क्षण चुरा करके अपने आप को जी लेते हैं कुछ लोग, पर पूरा का पूरा जो फोकस पॉइंट होता है वो बच्चे होते हैं। बच्चे कभी समझ नहीं पाते इस बात को जब तक वो खुद माँ बाप नहीं बनते, और खुद जब वो ऐसे माँ बाप नहीं बनते हैं जब उनके बच्चे उनको उसी तरह के तंग करें, तब तक वो समझ नहीं पाते हैं कि माँ बाप मेरे ऐसे क्यों है, मुझे ऐसे, मेरे साथ ऐसे व्यवहार क्यों करते हैं। इसीलिए जीवन में दोनों की जरूरत होती है, और अगर पापा ना हो या माँ ना हो तो वो जो परवरिश होती है, वो जिस तरह के नर्चरिंग होती है, वो एक अननेचुरल डेवलपमेंट होता है बच्चे का। बच्चा सचमुच साइकोलॉजिकली बहुत कमजोर होता है जिसके साथ माँ या बाप में से एक होता है, जो सिंगल पेरेंट जिन बच्चों के होते हैं। अमेरिका में आप देखेंगे ज्यादातर बहुत सारे बच्चे ऐसे सिंगल पेरेंट के साथ रहना पड़ता है। ऐसे बच्चों की जो मानसिकता है, ऐसी बच्चों की जो साइकोलॉजी है, वो इतना वो हो सकता है पढ़ने लिखने में बहुत आगे बढ़ गए हो, फिजिकली बड़े स्ट्रांग हो, पर साइकोलॉजिकली वो बहुत कहीं ना कहीं कमजोर होते हैं, कहीं ना कहीं इतना वीक होते हैं, और उनके अंदर वो जो एक पूर्णता होती है, जो होलिस्टिकनेस होता है, उनमें कम होता है। या तो वो बड़े एग्रेसिव होते हैं, या बहुत बहुत सारे मामले में वो साइको होते हैं, तो बहुत सारी चीजों के साथ उनको जूझना पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि सर्वे में कि जिन बच्चों के साथ जो जिन बच्चों को बाप के साथ ज्यादा समय गुजारने को मौका मिला, वो साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा हाई होता है, क्योंकि पिता से जो प्रोटेक्टिव जो फैक्टर है वो पिता में बच्चे देखते हैं, अपने पापा में ज्यादा बच्चे देखते हैं। इसीलिए हमारे यहां जो फादर के लिए जो शब्द है वो पिता शब्द है, संस्कृत का शब्द है। वो पिता शब्द का जो रूट है पा, उसका मतलब होता है रक्षा करना, मतलब पिता का मतलब ही होता है जो आपको प्रोटेक्ट करे। घर में पिता कुछ करे न करे, पर पिता का होने से ही बच्चों के अंदर एक सिक्योरिटी की फीलिंग पैदा करता है, एक सुरक्षा का भाव पैदा करता है बच्चों के अंदर। और जो बच्चे जितने ज्यादा पापा के सानिध्य को, उनके साथ रहने का सौभाग्य पाते हैं, सौभाग्य इसलिए कि आजकल कभी कभी पेरेंट्स, बहुत सारे पेरेंट अपने अपने प्रोफेशनल काम के कारण बच्चों को इतना टाइम नहीं दे पाते, डे केयर में दिन दिन भर छोड़ते हैं, सुबह से रात तक, रात को भी कितने समय दे पाते हैं। पर जिन बच्चों को आज के जमाने में भी वो सौभाग्य मिलता है कि वो पिता के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिता पाए, वो सचमुच उनके अंदर वो सुरक्षा भाव ज्यादा ज्यादा अधिक होता है। एक संस्कृत में श्लोक है, तपसा देवते ज्याभिवंदनेन तितिक्षया सुप्रशस्तैरुपायैश्चापिहन्ते पितरः सुतान। जो लोग समझ नहीं पाते हैं, जो माएं समझ नहीं पाती हैं कि पिता करता क्या है, तो बच्चा जितना छोटा होता है उतना ज्यादा मां की जरूरत होती है। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वो पिता का जरूरत उसको होता है, इनडायरेक्टली होता है, हो सकता है वो डायरेक्टली उसको एहसास न करे। बच्चा जो पढ़ने जाता है, स्कूल कॉलेज से ढूंढने से लेकर के अच्छे से अच्छे स्कूल या कॉलेज को ढूंढने, आजकल के हमारे यहाँ बच्चे तो बचपन से सेल्फ इंडिपेंडेंट होते हैं, तब भी इंडियन बच्चों के अभी भी थोड़ी आदत है माँ बाप के ऊपर डिपेंड रहने की, वो उनकी आदत नहीं, माँ बाप ऐसे उनको डिपेंडेंट बनाते हैं, वो प्यार वो जो अपनापन, जो एक देशी अपनापन है, कभी कभी यहाँ के बच्चे उसे चिढ़ जाते हैं, इतना अपनापन हमें नहीं चाहिए, हमें तो इंडिपेंडेंस ही चाहिए, अपनापन कम चाहिए, अपनापन अपने पास रखो। तो बहुत सारे माँ बाप जरा इमोशनल होते हैं, इंडियन माँ बाप वो हजम नहीं कर पाते, वो तो कहते नहीं हम तो तुम्हें हमेशा प्यार करना चाहते रखना चाहते हैं। अब देखिये स्मृति जी अभी इमोशनल हो रही थी क्योंकि उसका बेटा कल डिट्रॉइट गया। तो पर आजकल के ये नए जमाने के बच्चों को ये माँ बाप के ज्यादा इमोशन शायद बहुत सारे बच्चों को पसंद नहीं आता, पर वो जब खुद माँ बाप बनेंगे तब समझ में आएगा कि ये क्यों होता है। आप हजारों किलोमीटर दूर रहो या घर के पास रहो, आप कहीं भी रहो, 24 घंटे माँ बाप के दिमाग में हम छाए रहते हैं, हमारी भावना छाए रहती है। हम सब माइग्रेटेड हैं, बाहर से आए हैं आप लोग, हम भी सभी आए हैं घर से, माँ बाप को छोड़ करके पहली बार आए होंगे। जब बच्चा तरक्की करता है, आगे बढ़ता है, पढ़ाई लिखाई करता है, आगे बढ़ता है, बहुत पैसा कमाता है, बहुत नाम कमाता है, हो सकता है उसकी जो हिस्सेदारी है, उसका जो डिविडेंट है, वो पिता या माता को ना मिलता हो। कभी किसी पिता माता को उसकी चिंता नहीं होती है कि बच्चा जब मेरा आगे बढ़ेगा तो उसका मुझे क्या मिलेगा। वो इस सोच से कोई माँ बाप अपने बच्चों को पालता ही नहीं है। बच्चे जब खुश होते हैं माँ बाप अपनी गरीबी में भी खुश हो जाते हैं, बच्चे जब जीवन में हर तरह से आगे बढ़ते हैं माँ बाप अपने कहीं भी ना हो तब भी वो सुखी होते हैं। जब पहली बार किसी गरीब माँ बाप के बच्चे या मिडिल क्लास माँ बाप के बच्चा बाहर जाता है, बहुत अच्छा पढ़ाई लिखाई करके कमाता है, बड़े बड़े घर खरीदता है, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदता है, माँ बाप को फोन पर समाचार मिलता है, वो घर में वही अपने पैदल चलते हैं, रिक्शे से चलते हैं, बस से चलते हैं, वो गांव में या अपने शहर में, छोटे शहर में, वो अपने से छोटे में घर, छोटे से घर में रहते हैं, पर सारे घर में, पड़ोस में, आस पास के सारे एरिया में ढिंडोरा पीटते फिरते रहते हैं, मेरे बच्चे ने क्या क्या अचीव किया। आपको सिर्फ एक बार फोन करने की जरूरत है गांव के, अपने देश में, कि अगर आपके माँ बाप देश उधर है किसी छोटे शहर में, गांव में, बड़े शहर में, कि आज मुझे ये अचीव हुआ, तो आपको आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो माँ बाप कितने हजारों लोगों तक वो बात फैलाते खुशी से कि मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने आज ये किया, आज ये लिया, आज ये पाया, आज ये पाया। पड़ोसियों को जलन होता है, पर वो उनका स्वभाव है, वो अपनी खुशी को, उनको खुद को नहीं मिलता वो सुख, वो खुद वो सुख को नहीं पाते, ना उनको कभी चिंता होती है वो सुख हमें मिले। बच्चे खुश हैं तो उसी में वो खुशी से उछल जाते हैं, वो पड़ोसी की ईर्ष्या के कारण बन जाते हैं, पड़ोसी से लड़ाई करने को तैयार हो जाते हैं, बस इसीलिए कि हमारे बच्चा हमारे तरह खुश रहे। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंसानों में, आप पशुओं में, पक्षियों में भी वही नेचर देखेंगे। श्लोक बड़ा सुंदर बात यहाँ कहता है, द फादर्स आल्सो बी ऑब्जर्विंग सिवियर एक्सेटिसिज्म। आप देखेंगे हजारों माँ बाप अपने बच्चों को बड़ा बनाने के लिए कितने कष्ट सहते हैं, कितनी तपस्याएं करते हैं। सबसे पहली बार एक पुरुष का, जो नींद में, जब जो नींद में खलबली पड़ती है, नींद का स्ट्रक्चर बिगड़ता है जब उसके घर में बच्चा आता है, माँ के तो बिगड़ता ही है, तो पिता का भी बिगड़ने लगता है, जो सोने का जो उसका सिस्टम था वो बिगड़ता है, दोस्त रिश्तेदारी में कमी आने लगता है, जैसे जैसे बच्चे घर में बड़ा होता है वैसे उसके बाहर का सर्कल कम होने लगता है, उसकी रात की नींद में खलबल मचने लगता है, वो जो 9 बजे 10 बजे सोता था अब नहीं हो पाता है, अब रात भर बच्चा रोता है तो 10 बार उठना पड़ता है। तो पहले ये हम भूल जाते हैं, बच्चा जैसे ही 8-10 साल का होता है भूल जाता है कि उसके साथ क्या हुआ। 12-13 साल के बच्चे तो माँ बाप पर सवाल दागने शुरू कर देते हैं, टीनेज के बच्चे शुरू कर देते हैं, पर वो जो 10-12 साल में माँ बाप की जो तपस्या है, वो रात की नींद खराब करने से लेकर के ऑफिस में बैठे हुए भी 24 घंटे इसी सोच में रहा कि बच्चा ठीक है कि नहीं, उसको जुकाम नहीं आया कि माँ बाप के कि बीपी हाई हो जाता है, बच्चे को कहीं गर्मी थोड़ी लगी नहीं, फीवर का हुआ नहीं कि माँ बाप को फीवर होना शुरू हो जाता है, ये कल्पना आप नहीं कर सकते। और ये ईश्वर की इतनी खूबसूरत व्यवस्था है, माँ बाप का यही जो इमोशन है इसी से बच्चे बढ़ जाते हैं, इसी से बच्चे परवरिश को प्राप्त कर जाते हैं। बाय द एडोरेशन ऑफ सेलेस्टिशियल्स, कितने सारे माँ बाप पिता आपको मिलेंगे जो अपने बच्चे की भविष्य के लिए, बच्चा अच्छा आगे बढ़े उसके लिए कितने मंदिरों में माथा लगाते रहते फिरते रहते हैं, अपने बच्चे के भविष्य के लिए कितने बाबाओं के पास आप जाकर देखेंगे, माओं को और पिताओं को देखेंगे, जो बाबाओं से यही मांगते हैं कि मेरे बच्चे का भला कर दो, कल्याण कर दो, नौकरी नहीं लग रही है उसको कहीं नौकरी लगा दो, तो कहीं भी मौका मिले, वो नेता हो, बाबा हो, मंदिर हो, वो अंधविश्वास हो, विश्वास हो, कुछ भी हो, वो सब कुछ को करने को तैयार हो जाते हैं अपने बच्चे के भविष्य के लिए। और सुख, गर्मी सर्दी आप देखेंगे अभी भी यहाँ भी, जबकि ज्यादातर पेरेंट्स यहाँ बहुत पढ़े लिखे हैं, हाईली एजुकेटेड हैं, बहुत वेल एस्टेब्लिश्ड है, उसके बावजूद भी बच्चा स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, तो माँ बाप भी उसके साथ जाते हैं, उसके एडमिशन में हेल्प करने, उसके प्रोफेसरों के साथ जान पहचान करने स्कूल में जाते रहते हैं, जरूरत हो ना हो उनको वो सिक्योरिटी का फीलिंग होता है कि मेरे बच्चा मेरे होते हुए किसी तरह की प्रॉब्लम को फेस ना करे, वो खुद छुट्टियां लेते हैं, खुद बीमार हो तो तब भी चलता है जाते हैं। ये जो कंट्रीब्यूशन है, सच बात है कि माँ बाप के बारे में चर्चा करना बड़ा बेहुदी लगता है, क्योंकि ये खुद व्यक्ति जब बड़ा होता है, क्योंकि हम सब माँ बाप हैं, हम खुद जानते हैं बच्चों को परवरिश में हम कितना कष्ट करते हैं, या हमारे माँ बाप तभी हम समझ पाते हैं कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए क्या किया है। और सज्जनों देवियों, और बड़ी मजेदार बात है, ऐसा नहीं कि पढ़े लिखे लोग, गरीब से गरीब आदमी भी जो भूखा रहता है या गरीब है वो भी मजदूरी करता है, चाहे 8 घंटे की जगह 15 घंटे, क्योंकि उसको बच्चों को अच्छा खाना मिले, अच्छा खुराक मिले। आज भी ये ट्रेडिशन है कि माँ बाप खराब कपड़े पहन ले, पर जो सबसे अच्छे कपड़े हैं वो बच्चे पहनेंगे, जो सबसे ज्यादा अच्छा सुख है वो बच्चों को मिलता है। माँ बाप अपने लिए कम लाए पर बच्चों, कोई त्योहार होता है गरीबों के घर में, देखिए बाप अपने लिए नहीं लाता है, जहां बाप खुद कमाता है माँ घर का काम करती है, कमा करके लाते हैं, क्योंकि त्योहारों में बच्चों के लिए कपड़े बनाने हैं, बच्चों को खुशी देनी है। तो ये जो आप इसको नेचुरल कहे या इमोशन कहे, कुछ भी कहें, पर हम सबके जीवन में ये होता है, मतलब कोई ना कोई हमारे लिए सोचता है, अपने सारे शरीर को, अपने धन को, अपने मन को सैक्रिफाइस करता है, और अंत तक मैं 60 साल का हूं या 70 साल का हूं या मैं 6 साल का हूं, मेरे माँ बाप मेरी चिंता करते हैं, मेरी पत्नी मेरी चिंता करती है नहीं करती है वो रिलेटिव सब्जेक्ट है, वो कब चिंता करती है कब नहीं करती है, मेरा पति मेरा चिंता करता है नहीं करता है ये भी एक बड़ा रिलेटिव सब्जेक्ट है, उसके दिमाग पर डिपेंड करता है कि वो कब करे या ना करे। पर माँ बाप कभी कोई रिलेटिव सोच के साथ बच्चों से, बच्चों की सोच नहीं रखते हैं, परिस्थिति कैसा भी हो। कभी कभी तो बच्चे माँ बाप को बहुत टर्चर करते हैं, बहुत तंग करते हैं, बड़े दुखी करते हैं, उसके बावजूद भी माँ बाप कभी नहीं चाहते कि मेरे बच्चे को कभी दुख हो। कहीं अगर गलती से उनको सूचना मिलती है, छोटी सी छोटी इंसिडेंट की, कि उनके बच्चों के साथ कुछ बुरा हुआ है, तो वो पागलों की तरह हो जाते हैं, कुछ कर पाए या ना कर पाए। तो जीवन में जो सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है वो माँ बाप और बच्चों के बीच में होता है, जहां सचमुच कुछ डिमांड नहीं होता, कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं होता। अगर कुछ माँ बाप का एक्सपेक्टेशन है, कोई आशा है, सिर्फ यही है कि तुम बहुत बड़ा बनो। अगर माँ बाप बच्चों को टोकते हैं, डांटते हैं, और हमें लगता है कि वो कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, वो एक्सपेक्टेशन ये नहीं है कि हम जब बड़े होकर के बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे, बहुत कमाएंगे, बहुत ज्ञानी बनेंगे, धनी बनेंगे, तो हम उनको कुछ हिस्सा देंगे, इसीलिए कि उनको सिर्फ यही हमारा एक्सपेक्टेशन है कि तुम कुछ अच्छा बन जाओ, तुम्हारी अच्छाई में हमारी खुशी झलक जाती है। तो जीवन को, जीवन के हर पल को माँ बाप जब बच्चों के चारों तरफ घुमाते हैं, और बच्चे जैसे ही इंडिपेंडेंट होते हैं, बाय इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंट होने का जब उनको शौक चढ़ता है, खास करके टीन एज में, जैसे ही बच्चे हमारे 13 ईयर्स हो जाते हैं ना, 13 साल से लेकर के 20 साल का जो एज होता है, ये बड़ा खतरनाक एज होता है। इस एज में ज्यादातर बच्चे माँ बाप को तो अपना सबसे बड़ा दुश्मन है, ये 24 घंटे टोकते हैं, 24 घंटे हमारे ऊपर वो बांधते रहते हैं। इवन जो स्कूल में जो टीचर्स या कॉलेज में जो प्रोफेसर होते हैं वो बड़ा बेवकूफ है, कुछ आता जाता नहीं, पता नहीं कौन इनको प्रोफेसर बना दिया, सारा ज्ञान तो हमारे पास है। ये टीन एज के बच्चों की, ऐसा नहीं कि हमारे बच्चों का, हम भी जब टीन एजर थे ऐसे ही सोचते थे, आप भी जब थे तब भी यही सोचते होंगे, थोड़ा बहुत ज्ञान हो गया बस प्रोफेसर तो 2% का है, थोड़े बहुत कुछ हो गया माँ बाप तो किसी काम के नहीं है। ये ठीक है, ये बच्चों का पड़ाव है, अगर उनको समझ आ जाए बेटर है, नहीं समझ आए तो वो एक एज पर समझ में आ जाएगा। पर जो रियलिटी है, जो फैक्ट है, वो फैक्ट है। जो नहीं मानता वो भी 20-25 साल का जब होता है, हो सकता है तब भी अकल ना आए, पर जब खुद माँ बाप बनता है तो उनको समझ में आता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा, मनुस्मृति में, पिता मूर्ते प्रजापते है, फादर इज इमेज ऑफ द क्रिएटर। प्रजापति कहते परमात्मा को जिसने सृष्टि रचना की है, सृष्टि रचना करने वाला जो परमात्मा है, मानो मानो उसी का एक रूप है पिता। जैसे सृष्टि करने वाला परमात्मा संसार को, हम सबको बनाता है, हम सबको बनाने से पहले हमारे खाने पीने रहने की व्यवस्था करता है, ये पेड़ पौधे हवा पानी हर तरह की सुविधा होती है, तभी तभी जो जीव जगत है तब वो संसार पर आता है। इसी तरह जो पिता है वो उस प्रजापति का दूसरा रूप है। ये फोटो मैंने जानबूझ के दी है, ये फोटो को आप देखिएगा, ये गरीब घर का एक बाप होगा, पर ऐसा नहीं है कि धनी लोग सिर्फ अच्छे पिता या अच्छे माताएं होती हैं। जो झोपड़ी में रहता है, जिसके घर में दो दिन में एक बार चूल्हा जलता है, मतलब खाना बनता है, वैसे तो बड़े लोगों, आज तो अमेरिका में भी आप तो दो दो महीने में, एक एक हफ्ते में एक बार खाना भी बहुत लोगों घर में बनता है, पैसा होने पर भी। फिर ये लॉजिक भी ठीक नहीं चलेगा। अब तो हम एक बार बना के फ्रिज में रख देते हैं, फिर एक हफ्ते तक खाते हैं। मतलब जिनके घर में दो दिन में एक बार खाना बनता है, इसीलिए नहीं कि फ्रिज में रखना है, इसीलिए कि बाकी पैसा नहीं है, कि चावल ही नहीं, रोटी नहीं है बनाने के लिए। ऐसे लोगों के घर में भी बच्चे बढ़ते हैं, वो बाप मजबूरी, माँ मजदूरी करते हैं। भारत में तो माए काम करने बाहर कम जाती थी, पिता लोग जाते थे, मजदूरी करते हैं, और अपने पेट में अगर कम मिला, त्योहारों में कम हुआ, अपने पेट में भीगे कपड़े रख करके भूख को शांत करने के लिए बच्चों को खिलाकर खुश होते थे, बच्चों के लिए खिलौना लाकर खुश होते थे। एक छोटी सी कविता मुझे कहीं से मिली कि व्हाट इज ए डैड, तो मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूं। डैड इज समवन हु वांट्स टू कैच यू बिफोर यू फॉल, बट इंस्टेड पिक्स यू अप, ब्रूसेस यू अप एंड लेट्स यू ट्राई अगेन। A dad is someone who wants to keep you from making mistakes, but instead lets you find your own way, even though his heart breaks in silence when you get hurt. इसी प्रसंग में मैं कविता को आगे बढ़ने से पहले एक बात यहाँ आपको बताना चाहता हूँ। ये पिता लोग जो होते हैं, जो फादर्स होते हैं, ये बहुत बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टूड मेंबरों में एक होते हैं फैमिली में। माँ इतना ज्यादा मिसअंडरस्टूड नहीं होती है जितने पिता लोग मिसअंडरस्टूड होते हैं। इसीलिए जैसे अब स्मृति जी कह रही थी, पिताओं के लिए कविता ही नहीं लिखते हैं, क्योंकि बहुत कम लोगों को लगता है पिता का कंट्रीब्यूशन क्या है। डांटता है, फटकारता है, हमेशा टोकता है, गुस्से में रहता है। ये कविता, ये जो इंग्लिश की कविता, उसका झलक है जी। थोड़ी बहुत जो पिता का माता से फर्क है वो यही है, नेचुरली एक पुरुष है एक स्त्री है, दोनों में हार्मोन अलग है, दोनों में बहुत सारे इमोशंस अलग हैं। पिता का जो इमोशन है वो अलग टाइप का है, इसीलिए कभी कभी बच्चे बहुत ज्यादा पिताओं से नाराज रहते हैं। वो प्यार अंदर होता है, बाहर बड़े सख्त होते हैं, और खास करके जो एशियन पेरेंट्स होते हैं, ये नहीं कि मुझे पहले लगता था कि ये हमारे इंडियन पेरेंट्स ही ऐसे होते हैं, तो बाद में पता चला ना ये जो पूरा का पूरा जो ईस्टर्न बेल्ट है, वो जापान हो, चाइना हो, कोरिया हो, इंडिया हो, इंडोनेशिया हो, थाईलैंड, जो पूरा का पूरा जो एशियन बेल्ट है, उनके वहां जो पापा लोग होते हैं वो इसी टाइप के होते हैं। मतलब ऊपर बड़ा सख्त होते हैं, अंदर बड़े मुलायम होते हैं, और सख्ती से व्यवहार करते हैं। और बड़े मजेदार बात है, चाणक्य भी पुरुष ही था, पापा ही होगा, पापा ही था, तो उसने बड़े इंटरेस्टिंग चीज लिखा, बच्चे सुनेंगे तब गुस्सा करेंगे। तो उन्होंने लिखा, पंचवर्षाणी लालयत, पंचवर्षाणी दशवर्षाणी ताड़यत, प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रवत आचरित। ये पिताओं का कर्तव्य उन्होंने लिखा है कि 5 वर्ष तक तो बच्चों को खूब लाड़ करो, प्यार करो, 6 साल से लेकर 16 साल तक, 10 साल तक खूब स्ट्रिक्ट रहो। उन दिनों पिटाई भी होती थी, तो ताड़ा या धुमला पिटाई का, अब यहाँ तो पिटाई कम है, पर भारत में अभी भी पिटाई होती है, और केवल भारत में नहीं, पूरे एशियन बेल्ट में। इवन हमारे समय में भी जब स्कूल में हम जाते थे, अगर टीचर कोई शिकायत करता था, वह हम शिकायत कर देते, तो हमारे पापा स्कूल में बोलते थे, इसको पिटाई करो ना, अब हमारी पिटाई करो, जितना पिटाई करो, कोई कुछ नहीं कहने वाला, बदमाशी करता है तो खूब पिटो। तो खुद हमारे पेरेंट्स जाकर टीचर्स को बोलते हैं, आप इसकी पिटाई क्यों नहीं करते हो अगर बदमाशी करता है। आजकल के यहां के बच्चों को लगेगा ये तो बड़ा दुश्मन है, पर उसी से उभरे हुए लोग थे, जो तपे तपाए लोग होते थे उन दिनों। तो कहते हैं 16 साल तक उसके साथ बिल्कुल कठोर व्यवहार करो, जब 16 साल को पार कर जाए तो उसके साथ दोस्त की तरह व्यवहार करो, मित्र की तरह। दोस्त की तरह मतलब हर चीज में उसे सलाह लो, हर चीज उसके साथ शेयर करो, बच्चों को अपने दोस्तों के समान व्यवहार करो। तो क्योंकि ये एक इस तरह के कल्चर में पिता बढ़े हैं, पिता होने पर उनको ऐसा ही होना होता है, तो ज्यादातर पिता बच्चों के साथ बड़ी स्ट्रिक्टली पेश आते हैं। वैसे आजकल माएं भी हो गई हैं, पर जहां माएं होती हैं वहां हम अपेक्षा करेंगे कि पिता थोड़ा कोमल बने। मतलब दोनों एक ही दो सूरज परिवार में होना खतरनाक है, और दो चंद्र भी होना खतरनाक है। दोनों अगर सॉफ्ट हो गए तो फिर बच्चे तो राम भरोसे चलेंगे, सब छूटे, कोई कुछ नहीं कहेगा। मतलब एक सूरज बने थोड़ा तप दिखाए और एक चांद बने जो थोड़ा ठंडा करे। और इवन ये हम टाइम वाइज बांट भी सकते हैं, अगर दोनों को करने की है तो फिर हम बांट सकते हैं कि भाई आज अगर मैं गुस्से में हो तो तुम्हें चांद बनने की बनना पड़ेगा। ये कैरेक्टर है, निभाना पड़ता है, बच्चों को पालने के लिए निभाना पड़ता है। उसमें माँ बाप का कोई स्वार्थ नहीं होता है, उनका कोई उनकी कोई नेचर सामने नहीं आना चाहिए। वो स्ट्रैटेजी होती है बच्चों को पालने को, बच्चों को अच्छा बनाने के लिए स्ट्रिक्टनेस भी उतनी ही जरूरी होती है। इसीलिए बाप लोग जो पिता लोग होते हैं इसीलिए मिसअंडरस्टूड होते हैं। कभी कभी तो बहुत सारे बच्चे 50-60 साल की उम्र तक भी अपने पिता से नफरत करते हैं, क्योंकि वो बहुत खड़ूस ढंग से उसे व्यवहार करता था अपने बचपन में या जवानी में। पर वो कभी उसकी माँ को पूछे वो बताएगी कि जब वो उसकी जब बच्चे को जब दूर होता था, जब मरने के बाद वो अकेले होता था, वो बाप होता है तो कैसे वो रोता था, उसकी आंखों में आंसू आते थे जब वो अकेले में होता था। वह कोई समाचार मिलता था तो वो छुपा कर रोता था, माँ तो सामने रोती है, बाप छुपा कर रोता है। ये समझने की जरूरत है, जो पिताओं को थोड़ा मिसअंडरस्टैंड करते हैं अपने पिताओं को। आगे देखते हैं, ए डैड इज समवन हु होल्ड्स यू व्हेन यू क्राई, स्कोल्ड्स यू व्हेन यू ब्रेक द रूल्स, शाइन्स विद प्राइड व्हेन यू सक्सीड एंड हैज फेथ इन यू इवन व्हेन यू फेल। बड़ी हमारे यहाँ एक कहावत है संस्कृत में कि पुत्रादिच्छेद पराजयम। एक व्यक्ति अपने जीवन में पहली बार हारने पर खुश होता है जब वो अपने बच्चों से हारता है। मतलब जब बाप अपने बच्चों से हारता है किसी भी मामले में, वो लड़ाई में हारे, पढ़ाई में हारे, बिजनेस में हारे, मतलब बच्चा जब उसको हरा दे तो तब उसको सबसे ज्यादा खुशी होती है। बाकी हर हार में हम दुखी होकर आते हैं, पर जब बच्चा बाप को हराता है तो उससे ज्यादा सुख कभी बाप को मिलता नहीं है। एक दूसरी कविता मैं आपके सामने रख के समाप्त करूंगा, व्हाट मेक्स ए डैड। तो उसके कुछ इंग्रेडिएंट्स है कि डैड के अंदर किस तरह के इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो समझने, जो थोड़ी बहुत मां से अलग है। गॉड टुक द स्ट्रेंथ ऑफ ए माउंटेन, द मैजेस्टी ऑफ ए ट्री, द वार्मथ ऑफ ए समर सन। वो सन की बात बार बार करता हूं, सूरज, क्योंकि वो कड़वापन जो है। द काम ऑफ ए क्वाइट सी, द जेनेरियस सोल ऑफ नेचर, द कम्फर्टिंग आर्म ऑफ नाइट, द विजडम ऑफ द एजेस, द पावर ऑफ ईगल्स फ्लाइट, द जॉय ऑफ ए मॉर्निंग एंड स्प्रिंग, द फेथ ऑफ ए मस्टर्ड सीड, द पेशेंस ऑफ इटर्निटी, द डेप्थ ऑफ ए फैमिली नीड, देन गॉड कंबाइंड दीज क्वालिटीज। When there was nothing more to it, he knew his masterpiece was complete, and so he called it that. इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा कि अगर तुम जीवन में अपना उम्र बढ़ाना चाहते हो, यश चाहते हो, विधन चाहते हो, जो कुछ भी अचीव करना चाहते हो, तो अपने पिता को हमेशा रेस्पेक्ट करना। ये नहीं कि माँ को रेस्पेक्ट नहीं करना, माँ को रेस्पेक्ट की बात हम उस दिन कह चुके हैं, तो उस दिन पिता के बारे में नहीं कहा था, इसलिए आज पिताओं को मौका दीजिए। तो मतलब माता पिता को रेस्पेक्ट करना। जो व्यक्ति जीवन में हर तरह के सुख चाहता है वो माता पिता को रेस्पेक्ट जरूर करे। और हमेशा ध्यान रखिए, हम भी याद रखें, हमारे बच्चे भी याद रखें, हमसे जो बड़े भी याद रखें, जो अपने माँ बाप के किए हुए को भूलता है, या जो अपने माँ बाप को उनके बुढ़ापा में उनको वो पूरा सम्मान पूरा जो केयर नहीं लेता है, और कुछ हो ना हो उसकी बुढ़ापा में बड़ी दुर्गति होने वाली है, क्योंकि उसके बच्चे भी उसके साथ वही करने वाले हैं जो वो अपने माँ बाप के साथ करता है, बच्चे वहीं से सीखते हैं। इसीलिए और किसी के लिए हो ना हो, कम से कम खुद के बुढ़ापा को ठीक रखने के लिए अपने माँ बाप को जब वो निसहाय हो, हेल्पलेस हो, जब उनकी जरूरत हो तो जरूर उनके साथ खड़े रहिए, उनको सम्मान पूरा दीजिए, जो दुनिया में जितना ज्यादा सम्मान हो सके ईश्वर के बाद जरूर अपने माँ बाप को वो सम्मान दें और उनके प्रति वो भाव जरूर बनाए रखें। नहीं तो और कुछ हो ना हो, कोई और दंड दे न दे, आपके आने वाले बच्चे आपको जरूर दंड देंगे। या तो आप माँ बाप बने ही नहीं, अगर आप माँ बाप बनना है या बन चुके हैं तो अपने माँ बाप के साथ कोई गड़बड़ी मत करिए, क्योंकि हमारे बच्चे फिर हमें वही सजा देने वाले हैं। इसीलिए आगे एक बात, उपाध्यायम पितरम मातरम च ये विद्रुहंति मनसा कर्मणा वा तेषां पापं भ्रण हत्या विशिष्टम तस्मान्नान्य पाप कृतस्ति लोके। जो लोग अपने टीचर्स को, अपने पिता को, अपने माता को के साथ मन से भी या कर्म से किसी भी तरीके से अगर खराब व्यवहार करते हैं वो बहुत बड़े पापी होते हैं, भ्रूण हत्या से भी बड़ा पाप होता है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पितृ यज्ञ की कल जो पांच महायज्ञ की कल्पना की गई उसमें एक पितृ यज्ञ है, पिता और माता की सेवा करना ये हर गृहस्थ का परम कर्तव्य है। और इसीलिए एक ऋण भी, जो तीन सबसे बड़े डेब्ट्स हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, डेब्ट ऑफ नेचर, डेब्ट ऑफ पेरेंट्स एंड डेब्ट ऑफ टीचर्स, उनमें से एक जो महाऋण है वो है पिता माता का ऋण है, वो जीवन भर हमारे साथ रहता है। तो इसीलिए आज के इस पितृ दिवस पर हम उन सभी पिताओं को, पिताओं के पिताओं को और आप सबको हम नमन करते हैं कि आप अपने संतानों के लिए आदर्श बने, आप अपने संतानों को अपने कर्मों से, अपनी क्रियाओं से अच्छा बनाएं। और ये परंपरा, ईश्वर की सृष्टि की जो परंपरा चलती रहे, माँ बाप अपने माँ बाप की सम्मान करें, अपने बच्चों के लिए बलिदान करें और यही परंपरा चलती रहे और हर कोई अपने अपने सुख से जिए। इसीलिए हम सब आज के दिन पर उन पिताओं को और माताओं को नमस्कार करते हैं। सबकी भला हो। ओम शांति शांति।